हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 22। इसमें भगवान बता रहे हैं उनकी स्थिति जो कि कर्म के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हैं। नामे पार्थस्थि कर्तव्यम त्रिषु लोके सुकिंचन नानावाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रताप पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पृथ्वी लोक में हैं लोग, वो लोग कोई कार्य करते हैं ताकि उन्हें कोई भोग प्राप्त हो और या फिर स्वर्ग की प्राप्ति हो या उच्चतर लोगों की प्राप्ति हो। जो उच्चतर लोक में है व्यक्ति, वो इसलिए कार्य करते हैं ताकि अंततोगतों को मुक्ति की मुक्ति प्राप्त हो। जो निम्न लोक में है, जैसे नरक लोक में है, तो वो भी चाहेंगे कि वो लोग पृथ्वी लोक तक पहुँचें, ऐसे करके अपने दुखों का निवृत्ति हो उनकी। मुख्य उद्देश्य अगर आप देखें तो हम लोग सभी लोग दुख की निवृत्ति चाहते हैं और सुख की प्राप्ति चाहते हैं, इसके लिए कर्मों में हम लगे रहते हैं। लेकिन भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आत्मराम हैं, पूरी तरह से उनकी सब इच्छाएं संतुष्ट हैं और पूरी तरह से सुख में व्यवस्थित हैं, बल्कि वो स्वयं ही सुख हैं, स्वयं ही परमानंद हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कार्य करने की क्या आवश्यकता है? जैसे मान लीजिए किसी का पेट भरा है और उसको खाना तो दिया जाए तो क्या मुझे खाने की क्या आवश्यकता, मेरा पेट तो भरा हुआ है। और एक कारण से हम कर्म करते हैं और वो कर्म करने का कारण है हम अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं। तो भगवान तो पूर्ण शुद्ध हैं, परम पवित्र हैं, परम पवित्र हैं। तो भगवान को पवित्र होने के लिए भी कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो ना तो भोग प्राप्ति के लिए, ना सुख प्राप्ति के लिए, ना कोई शुद्धिकरण के लिए कोई भी कारण नहीं है भगवान जी किसी कार्य को करने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि फिर भी मैं जब नियत कर्मों में लगा रहता हूं, जब भी भगवान यहाँ पे आते हैं, चाहे वो राजा के रूप में आए, चाहे ब्राह्मण के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, भगवान उन कर्तव्यों को बहुत कठोरता से पालन करते हैं जो वर्णाश्रम के धर्म के कर्तव्य हैं। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने भी संन्यास धर्म का बहुत कठोरता से पालन किया। तो उद्देश्य क्या है वो समझने का हम प्रयास करते हैं। जब उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है तो क्यों कर रहे हैं ऐसे करने के लिए? तात्पर्य, वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है, तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवतानाम परमम च देवतम पतिम पतीनाम परमं परस्ताद् विदाम देव भुवनेश मिट्यम न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्य अधिकश्च दृश्यते परास्त शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है श्वेताश्वतर उपनिषद का, रूपा जिसको बहुत बार कोट करते हैं। अगर आप इन श्लोक शब्दों को देखें तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, बहुत सारे ईश्वर हैं, नियामक हैं, लेकिन उन सब नियामकों के नियामक हैं वो, देवताओं में परम देवता हैं, देवता भी अपनी आवश्यकताओं के लिए उनके पास जाते हैं, पति पतिनाम परमम परस्ताद, यानी कि सभी स्वामियों के वही स्वामी हैं, और विदाम देव भुवनेश मिड्यम, जितने भी भुवन हैं, जितने भी लोक हैं, उनके वो ईश्वर हैं। उसका कह रहे हैं नतस्य कार्यम करणम च विद्यते, यानी कि उनके लिए कोई कार्य करने के लिए योग्य नहीं है, करने की कोई आवश्यकता नहीं है। न तत् समस्याभ्य अधिकश्च दृश्यते, न तो भगवान के समान कोई है और न भगवान से श्रेष्ठ कोई है। परास्त शक्तिर विविधे विश्रुयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, भगवान की शक्तियाँ बड़ी अद्भुत हैं क्योंकि इनकी इच्छा मात्र से सारा कुछ संपादित हो जाता है। प्रभुपाद देखिए क्या बोल रहे हैं ट्रांसलेशन में, परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान हैं। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है। वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शरीर शारीरिक स्वरूप समान जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है और ना ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियाँ बहुरूपिणी हैं। बहुरूपिणी का मतलब विभिन्न प्रकार की हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक कार्य अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान की इच्छा मात्र से कार्य पूरे हो जाते हैं। अगर हमें कुछ सृष्टि करनी होती है तो हमें प्रयास करना पड़ता है, लेकिन भगवान की इच्छा मात्र से इस पूरे विशाल जगत की सृष्टि हो जाती है और उनकी इच्छा मात्र से ही पूरे विशाल जगत का प्रलय भी हो जाता है, प्रलय हो जाती है। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि उपनिषदों में तम तम शब्द यूज कर रहा है, लेकिन ये क्लियर नहीं होता है कि वो तम है कौन, भगवान है कौन, वो व्यक्ति है कौन। इसलिए भगवद गीता बड़ा अच्छा उपनिषद है, क्योंकि इसमें मालूम चलता है कि वो तम, वो महान व्यक्ति, वो सर्वे सर्वा, वो जगत के कारण है भगवान कृष्ण। ठीक है, अगर हम ये जान भी लें कि सारे गुण उनके अंदर हैं, तो निश्चित रूप से हमारे मन में जिज्ञासा तो होगी कि वो व्यक्ति हैं कौन जो इतने विलक्षण हैं, लेकिन वो जिज्ञासा उपनिषद पूरी तरह से शांत नहीं करते। इसीलिए पुराणों के जो सरमौर हैं, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता, इसके द्वारा हमको ठीक ठीक मालूम चलता है कि वो सर्वेश्वर जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ईश्वर से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। थोड़ा समझने का प्रयास करिए, पूर्ण ऐश्वर्य मतलब धन बल बुद्धि, जो भी ऐश्वर्य है वो भगवान में संपूर्ण मात्रा में है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अर्थात भूतकाल में भी थी, अभी भी भगवान है के पास ही ऐश्वर्य है और भविष्य काल में भी रहेगा। ऐसा कोई समय नहीं है जब भगवान के पास ही ऐश्वर्य ना रहे। सत्य जो शब्द का उपयोग करने का अर्थ यही होता है कि कोई वस्तु शाश्वत है। शाश्वत रूप से भगवान ऐश्वर्यशाली हैं। कभी भी ऐसा नहीं कि उन्हें गरीब होना पड़े। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है, किंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैंने शुरुआत किया था डिस्कशन की, कि इस जगत में हम कार्य करते हैं क्योंकि हम किसी चीज का अभाव अनुभव करते हैं। हमें कुछ फल चाहिए। जैसे भूख लगती है तो खाना खाते हैं, भूख नहीं हो तो खाना नहीं खाएंगे। या फिर अच्छा खाना चाहते हैं क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रहती है। तो इस प्रकार की कोई भी वासना, किसी प्रकार का अभाव भगवान अपने अपने हृदय में अनुभव नहीं करते हैं। इस कारण से उनका जो कार्य करने का उद्देश्य है वो किसी भी तरह से कर्म बंधन या कर्म फल से प्रेरित नहीं होता है। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। तो ये बहुत सुंदर बात है कि भगवान कृष्ण क्षत्रिय के घर में आए, प्रकट हुए। इसलिए क्षत्रिय को कैसे कार्य करना चाहिए, इस चीज को भगवान ने बिल्कुल अच्छे से करके दिखाया। क्षत्रिय धर्म का पालन कैसे करना चाहिए ये भगवान ने दिखाया। तो उसका कारण क्या है, ताकि जो आगे वाले क्षत्रिय हैं वो ठीक प्रकार से क्षत्रिय धर्म का पालन करें। इस कारण से भगवान ऐसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने इसे पहले वाले श्लोक में बोला है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त्वे वितरोजना, जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसे ही बाकी उनका अनुसरण करते हैं। और भगवान जब आए तो उन्हें क्षत्रिय धर्म का भी सिद्धांत दिखाया, किस प्रकार से एक क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए, जीवन यापन करना चाहिए।
अब किसी के मन में आ सकता है, तो भगवान ने गोपियों के संग ये रासलीला क्यों करी? दूसरों की स्त्रियों के संग उनका भोग करना, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? सही बात है, शास्त्र में लिखा नहीं है, लेकिन भगवान दूसरों की स्त्रियों के संग उनका भोग नहीं कर रहे हैं। ये भगवान की बहुत अत्यंत गुहे लीला है, और जितनी भी गोपियां हैं वो भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं। केवल परकीय रस के आस्वादन के कारण परकीय भाव उनका होता है, भगवान से वो परकीय कभी नहीं है। ये विषय तो बहुत गहरा है, मैं खाली आपके मन में छोटा सा डाउट क्लियर करने के लिए बोल रहा हूँ। गोपियां भगवान की प्रेयसी हैं, और उस प्रेयसी भाव को बढ़ाने के लिए इस तरह से भगवान लीला करते हैं, अन्यथा भगवान गोपियां जो हैं भगवान की परकिया है नहीं, भगवान का खाली भाव परकिया है। कृष्ण हमारे प्रेमी प्रियतम है, उससे उनका उनका जो प्रेम है वो और बढ़ जाता है इस कारण से। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान गोपियों किसी दूसरे की पत्नी का भोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। और गोपियां भगवान के जब संग कर रही हैं तो वो आध्यात्मिक चिन्मय शरीर में होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को चर्चा अब हम छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, जब आप श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन समझ में यही आना चाहिए कि भगवान की ये सुंदर रासलीला, जो व्यक्ति सुनता है वो काम से मुक्त हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी इतनी भरी सभा में जहाँ महान महान भक्त लोग बैठे हैं, वहाँ प्राकृत रस की चर्चा नहीं करेंगे, एक सामान्य भौतिक पुरुष और स्त्री के संबंध के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, तो ये एटिकेट तो फॉलो करेंगे। तो इसी दृष्टि से समझ में आना चाहिए कि ये जो लीला है भगवान की बहुत श्रेष्ठ है, शुद्ध है, और भागवत में इसीलिए रखा गया है ताकि इसको पढ़ के लोग भगवान के बारे में समझ सकें। तो इसलिए अगर हम प्रामाणिक वैष्णव से सुनते हैं तब इस बात को हम समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ सकते। लेकिन फिर भी द्वारका में आकर भगवान ने जिस प्रकार से जीवन यापन किया, जीवन यापन तो नहीं कहना चाहिए, लीला संपादन किया, तो उसके द्वारा लोगों को शिक्षा मिली किस प्रकार से ब्राह्मणों को सत्कार करना चाहिए, किस प्रकार से क्षत्रिय को रहना चाहिए। ऐसे जैसे एक कथा आती है महाराज नृग करके, कि तो उन्होंने गलती से ब्राह्मण का धन ले लिया था, तो फिर उनको बाद में छिपकली बनना पड़ा। तो ये कथा जब एक लीला के माध्यम से उसका उद्धार भगवान कृष्ण ने किया था, तो लीला के माध्यम से भगवान ने समझाया और शिक्षा दी यदुदेव यदु कुमार है कि देखो इसे शिक्षा प्राप्त करो कि कभी भी ब्राह्मण का तुमको धन चुराना नहीं चाहिए, और अगर तुम पर कोई क्रोध भी करे ब्राह्मण तुमको सहन कर लेना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, भगवान कहेंगे अगले श्लोक में, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? यदि हेयम न वर्तेयम जातु कर्मण नितंद्रतः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए हमें क्षमा कीजिएगा, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया, अन्यथा समान व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत में इससे यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। इस चीज को आप श्री कृष्ण भगवान की दैनिक दिनचर्या, जहां तक मैं समझता हूँ 61 चैप्टर है श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध में, पढ़ सकते हैं किस प्रकार से भगवान एक आदर्श गृहस्थ का जीवन जिया करते थे, और उसके द्वारा जगत में लोगों को शिक्षा देते थे किस प्रकार से एक गृहस्थ को अपना जीवन जो है वो शास्त्रोचित तरीके से निभाना चाहिए। सुबह उठना, ब्राह्मण को ध्यान दान करना, स्नान करना, ध्यान करना, फिर उसके बाद अपने राजकाज के लिए जाना, पत्नी और बच्चों से अच्छा संबंध रखना, इस प्रकार से कैसे शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए ये भगवान ने सिखाया। और मनुष्य जीवन है ही इसके लिए, ताकि हम शास्त्र के अनुसार अपना जीवन यापन करें और अपनी चेतना को सुधारें, चेतना को उच्च गति प्राप्त कराएं। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि भगवान की चेतना परम शुद्ध है, कभी भी माया से प्रभावित नहीं होती है। तो भगवान अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, केवल हमको शिक्षा देने के लिए इस प्रकार से चल रहे हैं। इससे एक और चीज हमको शिक्षा प्राप्त मिलती है कि मान लीजिए हम अगर मान भी रहे हैं कि हमारी चेतना पूरी तरह से शुद्ध है, फिर भी अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए व्यक्ति को नियम पालन करने चाहिए। एक नौसिखिया भक्त नियमों का इसलिए पालन करता है ताकि उसके हृदय शुद्ध हो जाए, लेकिन एक महान भक्त नियमों का पालन नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है, और करते हैं अगर तो इसलिए करते हैं ताकि जो नए भक्त हैं उससे प्रेरणा ले सकें कि देखो इतने सीनियर भक्त हैं तो वो अगर नियमों का पालन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो मेरे को भी करना चाहिए। ये बात है। तो दूसरे को उदाहरण देने के लिए ऐसा करते हैं। और यही परिनिष्ठित भक्त की लक्षण है, उसकी निष्ठा भगवान की भक्ति में ही है संपूर्ण रूप से, लेकिन वो भगवान का कार्य करते हैं, भगवान का आशीर्वाद उनके ऊपर इसलिए और अधिक होता है क्योंकि वो समाज में रहकर समाज के अनुसार कर्तव्यों का पालन करते हैं, और इससे लोगों को शिक्षा मिलती है कैसे सामाजिक व्यवस्था बनी रहे और साथ साथ भक्ति में भी वो आगे बढ़ जाते हैं, और भक्ति भी कैसे की जाए साथ में। और अर्जुन इसी प्रकार के भक्त थे। एक श्लोक और हम देखेंगे। उत्से देयूरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहं संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि मा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय या वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ श्लोक में हम देखेंगे, अर्जुन ने अध्याय एक की शुरुआत एक में ये एक तर्क दिया था कि अगर हम सबको मार देंगे तो जो वर्ण संकर है उनकी उत्पत्ति होगी। तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि भगवान जो है वर्ण संकर की उत्पत्ति के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वो इसी इस प्रकार से कार्य करते हैं ताकि वर्ण संकर का उत्पत्ति ना हो। यानी कि उनको भगवान पर विश्वास करना चाहिए कि भगवान भी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध से क्या होगा, और भगवान की व्यवस्था के अनुसार वर्ण संकरों की उत्पत्ति नहीं हुई। महाराज युधिष्ठिर ने जितनी भी माता जी थे जिनके पति को डेथ हुआ था उनका इस प्रकार से संरक्षण किया कि किसी का कोई किसी के द्वारा कोई वर्ण संकर की उत्पत्ति नहीं हुई। तात्पर्य वर्ण संकर अवांछित धन संबंधा है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि गर्भाधान संस्कार नहीं होता है तो बुरी आत्माएं गर्भ में आती हैं, और जब वो मनुष्य शरीर धारण करेंगी तो भोग की इच्छाओं के कारण और शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करेंगी और समाज में अव्यवस्था फैलाएंगी। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। विधि विधान का अर्थ क्या है? गर्भाधान संस्कार और वधू और जो मतलब पत्नी और पति है उसके गुणों को मैच करा करके शादी कराना चाहिए, तो और उसके बाद दायित्व के द्वारा संतान उत्पत्ति करनी चाहिए, संतानों को शिक्षा देनी चाहिए, संस्कार देनी चाहिए। एक्चुअली एक बहुत अच्छा भक्त उस बारे में बोल रहे थे कि इस जगत में प्रॉब्लम ये नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्रॉब्लम ये है कि वो बढ़ी हुई पॉपुलेशन कर क्या रही है। तो अगर वो बढ़ी हुई पॉपुलेशन पाप कर रही है तो बहुत दिक्कत है, और अगर वो भक्त हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर सब लोग मांस खाना बंद कर दें तो जितना अन्न इस जगत में हो रहा है वो पर्याप्त है कई गुना अधिक जनता को खाना खिलाने के लिए, लेकिन क्योंकि लोग भोग करना चाहते हैं और मांस खाना चाहते हैं या अन्न को भी दबा के रख देते हैं, काला बाजारी करते हैं, इस कारण से पर्याप्त मात्रा में अन्न नहीं मिल रहा है। तो लोग कहते हैं अगर सब लोग भक्त बन जाएंगे तो क्या होगा? सब लोग भक्त बन जाएंगे तो कम से कम भुखमरी तो नहीं रहेगी, पूरा जगत एक्चुअली स्वर्ग बन जाएगा। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि वे जीव प्रतिभ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप से यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं, जिसको भगवान बोलते हैं यदि आचरति शरत। क्षमा कीजिएगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदा तदात्मानाम सज्जाम्य हम श्लोक भूल रहा हूं मैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अवधर्मस्य तदात्मानाम सज्जाम्य हम। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और धर्म का अभ्युत्थान होता है तो मैं अवतरित होता हूं। और धर्म का अर्थ एक है, यह भी है कि वो कर्तव्य जो इंसान को करने चाहिए जिसके द्वारा उसकी आत्मा की शुद्धि हो, उसकी चेतना का विकास हो। और ये धार्मिक ग्रंथों में हमें विधि विधानों के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे एक सिंपल सा विधान है, सुबह उठना चाहिए, तो एक विधान है और ये हम पालन नहीं करना चाहते, तो इसको पालन करते हैं तो हमारी चेतना का विकास स्वतः होने लगता है हम। लेकिन इसलिए भगवान सुबह नित्य प्रति उठते थे, तो प्रभुपाद आप उसको पढ़ सकते हैं, बड़ा सुंदर है। प्रभुपाद बोलते हैं कि किसकी पत्नी कितनी भी सुंदर हो, रुक्मणी जी के साथ भगवान सोते हैं लेकिन फिर भी सुबह उठते हैं, भोग विलास में लगे नहीं रहते। तो भगवान अपने आदर्श से दिखा रहे हैं कैसे गृहस्थ को जीना चाहिए। तो इसलिए आजकल बहुत बार गृहस्थ लोग बोलते हैं, अरे हम बच्चे हैं, हमारे ये पत्नी, हम कैसे सुबह उठेंगे। तो भगवान के भी तो हर भगवान के हर पत्नी से 10 बच्चे थे, तो फिर भगवान कैसे उठ जाते थे। तो फिर हम तो बोलने लगते हैं, अरे वो तो भगवान है। तो ये बड़ी गलत बात है, भगवान है तो भगवान के आदर्श का पालन करना चाहिए। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुकरण और अनुसरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते। अनुकरण मतलब होता है नकल करना, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि की गई है, न तत्समाचरे जातु मनसापि यनीश्वरः विनश्यत्याचरन् मौढ्यात् यथा रुद्रोब्धिजं विषम् ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमांस्तत्समाचरे। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। यानी जो लोग बहुत तेजस्वी हैं वो कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जो बाह्य रूप से हमें गड़बड़ दिखाई पड़े, तो उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। जैसी वो शिक्षा दे रहे हैं उसका पालन हमें करना चाहिए। अगर हम उनका अनुकरण करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास वो तेज नहीं है जिससे हम बुरी वस्तुओं को अपने हृदय से दूर रख सकें। एक वक्त अच्छा उदाहरण दे रहे थे, मान लीजिए हम कबड्डी कबड्डी का खेल कर रहे हैं, तो एक सिकटिया व्यक्ति है, पतला व्यक्ति है, तो उसके लिए बेहतर है कि वो कबड्डी के इस पाले में रहे। लेकिन अगर कोई बहुत तगड़ा पहलवान है, 6 फुट लंबा, तो दूसरे पाले में जाएगा, आराम से अपने आप को सब कुछ छूने देगा, फिर वापस आ जाएगा और उन लोगों को साथ में लेके आ जाएगा। तो प्रभुपाद जी और महान आचार्य इसी प्रकार से हैं, वो माया के किसी भी खेमे में जाकर के प्रचार कर सकते हैं और उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा माया का। लेकिन हम लोग माया से बद्ध जीव हैं, तो अगर हम प्रचार कर रहे हैं या कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हम माया के प्रति नेचुरली आकर्षित हैं, तो इतना खतरा नहीं लेना चाहिए कि माया से लोगों को माया से बाहर छुड़ाने के चक्कर में हम खुद ही बीमार पड़ जाएं या हम खुद ही उसके चक्कर में फंस जाएं। तो इसलिए जो महान आचार्य, जो महान देवता, महान भक्त लोग, महान या फिर भगवान स्वयं कार्य कर सकते हैं, उसका अनुकरण, उसका नकल नहीं करना चाहिए। कोई कहे कि भगवान की 16108 रानियां थी तो मैं भी कम से कम 16 पत्नियां तो रखूंगा, इस प्रकार से हमारा पतन हो जाएगा, हम नहीं कर सकते ऐसा। हमें सदैव ईश्वरों की यह की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों का वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ समझ मानना चाहिए। यानी कि हमें सोचना चाहिए कि सूर्य चंद्रमा कितने महान हैं और कोई उनको व्यक्ति नियंत्रित कर रहा है तो उसके अंदर कितना तेज होगा हम सोच भी नहीं सकते। तो उन लोगों का अनुकरण हमको नहीं करना चाहिए, और उनमें अगर कुछ दोष दिखे तो उस दोष को नजरअंदाज कर देना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई समान व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। सामान्य सी बात है। शिवजी के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसे ही अनेक मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वे अपने मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। शिवजी कभी गांजा नहीं पीते हैं। शिवजी ने विष पिया था और सब जानते हैं कि लोक कल्याण के लिए पिया था। तो ये उदाहरण लेकर के कि शिवजी, पहली बात तो ये दोषारोपण है कि शिवजी गांजा पीते हैं, शिवजी गांजा नहीं पीते हैं, लेकिन शिवजी के जो सो कॉल्ड झूठे भक्त हैं वो इस प्रकार से कार्य करते हैं शिवजी का बहाना लेकर के। देखो, शिवजी के समान जहर पीने के लिए योग्य नहीं है, किंतु वे ये भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु ये भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। आजकल के समाज में हम तुरंत किसी को भगवान की उपाधि दे देते हैं और पता लगता है कुछ समय के बाद कि वो भगवान जो हैं वो दांत के डॉक्टर के पास जा रहे हैं और अपना इलाज कराने के लिए, या वो और कोई बहुत बुरे बुरे कार्य करने लग जाते हैं। तो भगवान की शक्ति के बिना कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता है, और दूसरे बात, भगवान कोई बन नहीं सकता, भगवान स्वरूपगत रूप से भगवान रहते हैं। तो हमने यही सीखा आज यहाँ पे कि भगवान के जो शिक्षाएं हैं उसका पालन हमें करने का प्रयास करना चाहिए और भगवान का अनुकरण नहीं करना चाहिए, इससे हमारे जीवन में प्रगति होगी। हरे कृष्ण।